हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का श्री राम कथा के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब भक्तों को इस घोर कलयुग में भी भगवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अनेक वैष्णव भक्तों का समागम, वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। वेद व्यास जी ने अनेक वेद शास्त्र पुराण उपनिषद की रचना की। समस्त वेद शास्त्र एक स्वर से कहते हैं, साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्व शास्त्र कई। समस्त शास्त्र कहते हैं कि साधु का संग ही इस संसार में परम पद को प्राप्त करा सकता है। ऐसे वैष्णव परम भक्तों का समागम यहां पर हुआ है। भगवान की हम सब पर बहुत कृपा रही है, नहीं तो इस कलयुग में, इस माया नगरी में भक्तों का दर्शन होना ये बहुत दुर्लभ है। महाभारत में एक समय राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और उस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा ऋषि मुनि साधु संत महात्मा पधारे। महाराज युधिष्ठिर ने उस यज्ञ को संपन्न किया और उस यज्ञ में अनेक भक्तों को बुलाकर भगवत कथा और भगवत प्रसाद का सुअवसर प्रदान किया। भक्तों, हमारे इतिहास में, हमारी वैदिक परंपरा में जब कोई यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है तब उस यज्ञ के मंदिर में लगी हुई जो घंटी होती है वह अपने आप बजने लगती है। आप सब मंदिर में जाते हो और मंदिरों में घंटी लगी होती है और उसे हम अपने हाथ से बजाते हैं। वास्तव में उस घंटी को अपने हाथ से बजाने की जरूरत नहीं है। यदि हम यज्ञ को, चाहे ज्ञान यज्ञ हो या द्रव्य यज्ञ हो, उस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेते हैं तो वह घंटी अपने आप बज जाती है। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सबको भोजन प्रसाद खिलाया, परंतु दुख की एक बात हुई, वह घंटी नहीं बजी। महाराज युधिष्ठिर दुखी हो गए, मैंने इस यज्ञ में कोई कमी नहीं रखी, मैंने सब कुछ संपन्न किया, सबको बुलाया, भोजन कराया, लेकिन फिर भी यह घंटी क्यों नहीं बजी। दुखी होकर भगवान कृष्ण के पास गए, प्रभु प्रभु अनर्थ हो गया, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, इस यज्ञ में कुछ कमी रह गई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जरा देखो आजू बाजू के आसपास के गांव में कोई साधु महात्मा भूखे रह गए हैं, बिना भोजन कराए यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप लोगों के लिए भी इस भागवत ज्ञान यज्ञ में बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब लोग कथा के बाद प्रसाद लेकर जाइए, नहीं तो इस कथा का फल पूरा पूरा नहीं मिलता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर को नहीं मिला, महाराज युधिष्ठिर ढूंढते ढूंढते गांव की सीमा पर गए, वहां पर एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। दोनों हाथ जोड़कर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, परंतु मेरा यज्ञ आज सफल नहीं हुआ है, घंटी नहीं बजी है, मुझे लगता है मुझसे आपका कुछ अपराध हो गया है। प्रभु आप भूखे हो? बोले हाँ, संसार के सब लोग आपके यज्ञ में भोजन करने के लिए आए हैं, परंतु महाराज मैं आपके यहां भोजन करने के लिए नहीं आया, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा तो अब आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मुझे मेरे यज्ञ को संपन्न करना है। तब उस महात्मा ने कहा कि राजन, यदि 100 यज्ञ के फल को तुम मुझे अर्पण करते हो तब ही मैं आपके घर पर भोजन लेने के लिए आऊंगा। अब यहां तो एक भोजन के वांदे हैं, एक यज्ञ के वांदे हैं, और महात्मा कह रहे हैं 100 यज्ञ करके उनका फल यदि मुझे देते हो तब ही मैं आपके यहां भोजन करने के लिए आऊंगा। युधिष्ठिर महाराज और दुखी हुए, अब क्या करें, 100 यज्ञ का फल मैं उस महात्मा को कैसे दूं, और यदि नहीं देता हूं तो मेरा यज्ञ आज अधूरा रह जाता है। युधिष्ठिर महाराज घर पर वापस लौटे, चिंतित हैं। उस समय कृष्ण आए, द्रौपदी आई, भीम आए, बोले क्या हुआ? बोले वो महात्मा कहते हैं कि 100 यज्ञ का फल यदि तुम मुझे दोगे तब ही मैं आपके घर पर प्रसाद लेने आऊंगा। कृष्ण ने कहा सोचो सोचो, भीम गदा लेकर आए, प्रभु सोचने की जरूरत नहीं, आप कहो तो उठाकर लेकर आ जाऊं। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, क्या करें? तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मैं जाऊं। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे आप जाकर क्या करोगी, मैं साक्षात धर्मराज, मुझसे वो महात्मा घर पर नहीं आए तो तुमसे कैसे आएंगे? प्रभु एक मौका दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बोले ठीक है जाइए। उस समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी चलकर गई उस महात्मा के पास और महात्मा को कहा कि घर पर हमारा यज्ञ अधूरा रह गया है, आपका भोजन बाकी है, कृपया करके हमारे घर पर आइए और भोजन लीजिए। तब महात्मा ने वही बात कही, 100 यज्ञ का फल यदि तुम मुझे देते हो तब मैं आऊंगा। द्रौपदी ने कहा मंजूर है, लाइए हाथ में पानी, और पानी ग्रहण करके हाथ में मैं संकल्प लेती हूं कि मैं आपको 100 यज्ञ का फल प्रदान करूंगी। द्रौपदी ने हाथ में जल ले लिया, संकल्प कर लिया, बोले अब 100 यज्ञ का फल दो मुझे। तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु वहां पर संतों का मेला लगा हुआ है, आप चलकर हमारे घर पर आइए, और शास्त्र में लिखा है संतों को मिलने के लिए हम जब चलते हैं तो प्रत्येक कदम पर एक अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। महाराज यहां से हमारा घर 500 कदम दूर है, और यहां से आप हमारे घर पर आओगे एक नहीं 500 यज्ञ का फल मिलेगा, 100 आप रख लेना, 400 मुझे दे देना वापस। इसलिए तो संतों ने कहा है, संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। संतों को मिलने के लिए चलिए, सभी प्रकार के मान प्रतिष्ठा पद को भूलकर संत को मिलना चाहिए। क्या प्राप्त होता है? संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े, एक एक पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है संत को मिलने में। आप ऐसा मत समझिए यहां पर आकर बैठे हैं और सुन रहे हैं तब जाकर आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आप इस कथा में संतों को मिलने के लिए, भक्तों के बीच में बैठने के लिए अपने घर से चले हो, जितने कदम चले हो उतने कदम कदम पर सैकड़ों यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो गया है। यह है संतों को मिलने का फल। और वेद व्यास जी ने तो भागवत में यहां तक कह दिया, चलने की भी जरूरत नहीं, केवल मन में सोच लो कि कल मुझे राम कथा में जाना है, भागवत कथा में जाना है, कथा को सुनना है। कहते हैं सोचने मात्र से, मन में इच्छा करने मात्र से अभी वह कार्य संपन्न नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ। मन में मात्र सोचने मात्र से, सद्य ही अवरुद्ध ते तकृति भी सुश्रूष भी तत्क्षणात्। जिस दिन जिस समय हम सोचते हैं कि कल हम राम कथा में जाएंगे, उसी घड़ी भगवान श्री राम और कृष्ण हमारे हृदय में आकर बस जाते हैं, तुरंत। हमारे भगवान देरी नहीं करते हैं, तुरंत। भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों के हृदय में रहता हूं, साधवो हृदय मह्यम, और मैं ऐसे साधु को, मेरी कथा सुनने वाले को मेरे हृदय में रखता हूं। भगवान अपने भक्त को अपने हृदय रूपी तिजोरी में कैद करके रखते हैं। भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं कैसे, अससत मम जन्म उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जैसे एक लोभी अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखता है, छिपा कर रखता है, किसी की दृष्टि न पड़ जाए, कोई चुरा न ले, वैसे भगवान अपने भक्त को हृदय में रखते हैं, किसी की नजर न लग जाए। यह है संतों का संग, भक्तों का संग। परम सौभाग्य है आप सब सुकृतिशाली जीव हैं कि यहां पर भक्तों के बीच में भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गत सत्र में भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती 8 अपराध कर चुकी है। सती से 8 भूल हुई, 8 पाप हुआ। सबसे पहला सती ने कुंभज ऋषि के मुख से ठीक से कथा नहीं सुनी, कथा में सो गई, ये प्रथम अपराध। दूसरा, सती ने अपने पति जिसको प्रणाम कर रहे हैं, उनके पति जिसको प्रणाम कर रहे थे, जिस भगवान को दंडवत कर रहे थे, उस भगवान को प्रणाम नहीं किया, दूसरा अपराध। तीसरा अपराध, साक्षात भगवान श्री रामचंद्र पर संशय किया। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, हे अर्जुन इस संसार में जो लोग मुझ पर संशय करेगा, जो व्यक्ति मुझ पर संशय करेगा, वह इस जीवन में भी सुखी नहीं हो पाएगा और आने वाले जीवन में भी उनका पतन हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति। सती ने भगवान के ऊपर संशय, संदेह किया। चौथा अपराध, सती ने अपने पति से प्रश्न किया, ये कौन है। पांचवा अपराध, सती ने भगवान की परीक्षा लेने का फैसला किया। छठा अपराध, सती ने साक्षात जगत जननी माता जानकी का वेश धारण किया, वो भी भगवान के सामने। सातवां अपराध, सती ने भगवान को झूठ बोला, भगवान के सामने पर्दा रखा। और आठवां अपराध, जो सबसे बड़ा अपराध, सबसे बृहद अपराध, वे अपने पति के पास जाकर झूठ बोली। आगे के अपराध माफ हो गए होते यदि अपने पति को सच सच बता दिया होता है? क्योंकि शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं यदि भगवान के प्रति कुछ अपराध हो जाए, हरो रुष्टे गुरु स्यात्रा, यदि हरि का अपराध हो जाए तो गुरु की कृपा से उस हरि को मनाया जा सकता है, उस हरि को रिझाया जा सकता है। हरो रुष्टे गुरु स्यात्रा, परंतु गुरु रुष्टे न कश्चन, परंतु एक बार गुरु रुठ जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मना नहीं सकती है, साक्षात भगवान भी झुक जाते हैं। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुम एव प्रसाद एत, इसलिए हमारे सभी प्रयत्न सभी प्रकार की मेहनत करते हुए गुरुओं को वैष्णवों को वरिष्ठों को प्रसन्न रखना चाहिए। गुरु समान सती ने अपने पतिदेव से झूठ बोला सबसे बड़ा अपराध है। भक्तों सती से भूल हुई इसमें कोई दोराय नहीं है, और भूल तो बड़े बड़े देवताओं से भी होती है और संसार के मनुष्य से भी भूल होती है, परंतु सती की भूल में देवताओं की भूल में और हमारे द्वारा होने वाली भूल में अंतर क्या है? ये सती से भूल हुई, इंद्र के द्वारा सैकड़ों बार गलती हुई है, परंतु देवताओं का सती देवियों का ये स्वभाव है कि अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं। तुरंत सती ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, ये देवताओं का स्वभाव है। और मनुष्यों का स्वभाव कितनी भी बड़ी गलती कर देते हैं कितनी भी बड़ी भूल कर देते हैं परंतु स्वीकार नहीं करते हैं। पर्दा खुल जाए पर्दा फाश हो जाए लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करने से वह गलती क्षमा हो जाती है। सती ने अपनी गलती को स्वीकार किया परंतु भोलेनाथ हृदय से दुखी थे कि ये मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला। तुरंत कैलाश में जाकर बीते समंत सहस सतासी समाधि में स्थित हो गए, और भक्तों एक दो मिनट के लिए नहीं एक दो साल के लिए नहीं समंत सहस सहासी 87,000 वर्ष तक शिव जी को समाधि लग गई। समाधि में स्थित हो गए और देवी सती उनकी सेवा करती रही। उसी समय गोस्वामी जी एक कथा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि इस भौतिक सृष्टि का सर्जन करो और इस सृष्टि को चलाने के लिए प्रजा की उत्पत्ति करो। भगवान से आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने अनेक पुरुषों को जन्म दिया, और उस समय ब्रह्मा जी ने इस संसार की प्रजाओं के लीडर बनाए जिसे प्रजापति कहा गया, और उन सभी प्रजापतियों का राजा ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बनाया। और दक्ष प्रजापति जब सभी प्रजापतियों का राजा बना, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमानु हृदय तब आवा। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जिस दिन से दक्ष प्रजापति को राजा बनाया गया उस दिन से उनके हृदय में अभिमान आ गया। भक्तों ये मनुष्य बहुत अच्छा है, मनुष्य की बुद्धि बहुत अच्छी है, परंतु जब मनुष्य के पास धन पद मान प्रतिष्ठा आ जाती है तब ये बिगड़ जाता है। दक्ष प्रजापति बहुत अच्छे थे परंतु जैसे ही वे राजा बने तब उनको अभिमान चढ़ गया। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाही मदना। गोस्वामी जी एक सिद्धांत बताते हैं, इस संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो प्रभुता पाकर जो ऐश्वर्य धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा पाकर उनका मद न बढ़ा हो उनका अभिमान न बढ़ा हो। दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ। ये केवल दक्ष प्रजापति की बात नहीं, संसार में जितने लोग आए जब जब उनके पास धन आया तब तक अभिमान बढ़ा। कुबेर जी के दो पुत्र जिसका नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था बहुत अच्छे बालक थे, परंतु जैसे ही कुबेर जी के पुत्र हुए धन के धनाढ्य देवता के जब ये पुत्र हुए तब शिव जी के परम धाम कैलाश में मंदागिनी की धारा में वे अप्सराओं के साथ नग्न स्नान करने लगे भगवान के धाम में। अपराध। ये पैसा जो है कभी कभी बहुत पाप कराता है। उस समय नारद जी ने बहुत सुंदर कहा, अरे आपके पास धन है, आपसे तो अच्छे हैं संसार में रहने वाले गरीब लोग जिनके पास धन नहीं है बेचारे रात दिन पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उनके पास पाप करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। धन जो है अभिमान बढ़ा देता है। शास्त्र में राजा नहुष की कथा आती है, जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर क्योंकि भगवान के परम भक्त थे, पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, साक्षात भगवान शंकरषण को प्रकट किया था और पार्वती के श्राप के कारण वित्रासुर बने। और इंद्र ने जब वित्रासुर का वध किया तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या मूर्तिमान होकर इंद्र के पीछे पीछे दौड़ी। इंद्र भागा, बहुत भागा और मान सरोवर के जल में कमल की नाल में जाकर छिप गया। ब्रह्म हत्या उसे ढूंढ नहीं पाई। 1,000 वर्ष तक वह कमल की नाल में रहा। उस समय ब्रह्मा जी ने 1,000 वर्ष के लिए स्वर्ग का राज नहुष राजा को सौंप दिया। पृथ्वी के राजा थे परंतु योग्य थे इसलिए स्वर्ग के राजा बना दिए। राजा नहुष परम प्रतापी सर्वगुण संपन्न राजा थे, परंतु जिस दिन से वह स्वर्ग के राजा बने उस दिन से उसका अभिमान बढ़ गया। कैसा अभिमान बढ़ा? वे कहने लगे कि ये स्वर्ग का राज मेरा है, इसलिए ये स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी भी मेरी है। इंद्र पत्नी शची के पास जाकर प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे साथ संग करो, भोग करो, विवाह करो। भक्तों, इंद्र की पत्नी पतिव्रता नारी है, पर पुरुष को कभी देखती भी नहीं है, उनकी इच्छा नहीं थी। वे तुरंत अपने गुरुजी के पास गई, गुरुजी ये न चाहते हुए भी नहुष मुझसे विवाह करना चाहते हैं। गुरुजी ने बहुत सुंदर उपाय दिया और शची नहुष राजा के पास आई और कहा, राजन राजन मैं आपसे विवाह तो करूंगी परंतु एक शर्त है। बोले, कौन सी शर्त है? एक शर्त है कि यदि ये सप्तर्षि 7 ऋषि आपको अपने पालखी में बिठाकर मेरे पास लेकर आएंगे तब जाकर मैं आपसे विवाह करूंगी। ये तो अभिमान, स्वर्ग का राजा बन गया था, अभिमान चढ़ गया था, मद चढ़ गया था। तुरंत सप्तर्षि के पास गया, जो 7 ऋषि आज भी आकाश में, और 7 ऋषियों को कहा, चलो पालखी उठाओ। इतने वरिष्ठ भक्त, इतने वरिष्ठ साधु सन्यासियों के द्वारा पालखी उठवाया, खुद पालखी में बैठा। अरे बेचारे 7 ऋषि बूढ़े हो चुके थे, लंबी लंबी दाढ़ी जटा, तेज गति से नहीं चल पा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। और ये तो काम के आवेग में, हृदय में काम भड़क रहा था, कामातुराणाम न भय न लज्जा। जिसके दिमाग में काम का असर आ जाता है, ये काम जो है आंधी और तूफान की तरह होता है, व्यक्ति के विवेक को उड़ा देता है, बुद्धि नहीं रहती है। वे सप्तर्षियों को डांटने लगा, तेज चलो, जल्दी चलो। ये तो बेचारे बूढ़े धीरे 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 चल रहे थे, इससे रहा नहीं गया और पालखे में बैठे बैठे कुंभज ऋषि के मस्तक पर जोर से लात मारा। भक्तों, कुंभज ऋषि की जटा में दुर्वासा मुनि का वास है। तुरंत ऋषि मुनि को क्रोध आया और कहा कि काम वासना के आवेग में, धन और प्रद के मोह में तुम इस प्रकार से ऋषि मुनियों का अपराध कर रहे हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अजगर बन जाओ, सर्प हो जाओ। क्योंकि ये कह रहा था, जल्दी सरको, जल्दी सरको, जल्दी सरको। बोलते, सरको सरको क्या कर रहा है, जा श्राप देता हूं, तू सर्प हो जा। सर्प हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिस मनुष्य के जीवन में पद, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति होती है तब उसे मद चढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। दक्ष प्रजापति को अभिमान बढ़ गया। एक दिन की बात, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, शिव जी, अनेक प्रजापति, राजा महाराजा आए हुए थे। सब लोग बैठे और दक्ष प्रजापति जब उस यज्ञ कक्ष में प्रवेश किए, उस समय दक्ष प्रजापति के को देखकर सब लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा जी क्योंकि दक्ष प्रजापति के पिता हैं इसलिए खड़े नहीं हो पाए, बैठे थे। सब लोग खड़े हो गए परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। अब शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए वो तो शिव जी ही जानते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं बेचारे मंगला आरती में 3:30 बजे जगते हैं, जबकि आ गई होगी, पता नहीं चला होगा, इसलिए खड़े नहीं हो पाए। परंतु मैं आज एक आचार्य के मुख से सुना कि शिव जी कहीं भी बैठते हैं तो 1 सेकंड के से ज्यादा जब बैठते हैं तब उसे भगवान का स्मरण होने लगता है, वे समाधि में स्थित हो जाते हैं। तो उस समय शिव जी को भगवान की समाधि लग गई थी। दक्ष प्रजापति आए और दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये खड़ा नहीं हुआ। ये शिव जी जो है दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दक्ष प्रजापति की 16 कन्या थी, 16 पुत्री, और उनमें से सबसे छोटी पुत्री का नाम सती, जिसका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। और दक्ष प्रजापति आए और उसके उसके हृदय में ये बात बैठ गई कि ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। भक्तों, ये केवल दक्ष प्रजापति की बात नहीं, हम जैसे वक्ताओं में भी जब अभिमान बढ़ जाता है और जब व्यास मंच पर आते हैं तो लोग खड़े होते हैं, तो वक्ता ये नहीं देखते हैं कि कितने खड़े हुए, उसकी दृष्टि ये होती है कितने लोग बैठे हैं, ये अभिमान। ये अभिमान बहुत ठीक नहीं है। दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध हुआ, अपने आसन पर बैठकर तुरंत माइक हाथ में ले लिया और शिव जी का अपमान करने लगा। बोले ये मेरा दामाद बनकर बैठा है, न तो कुछ कपड़े पहनने का ढंग है, पूरा दिन रात भर शमशान में रहता है, और उसे यह भी नहीं पता है कि जब हमसे बड़े लोग आते हैं तो स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, ये भी नहीं जानता है। और ये मेरा शिष्य है, भागवत में अयम ही मे शिष्य, दक्ष प्रजापति कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी हिमालय में भागवत कथा थी तो वहां पर ये प्रसंग चल रहा था, तो मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि दक्ष प्रजापति ने ऐसे कैसे कह दिया कि शिव जी मेरा शिष्य है। मैंने तुरंत भागवत कथा को बंद किया क्योंकि पता नहीं क्या बोले। और फिर जहां हमको रहने के लिए जगह दी थी वहां जाकर आचार्यों के ग्रंथ को खोला तो श्रीपाद सिद्ध स्वामी ने वहां पर लिखा, उन्होंने प्रश्न उठाया, जो प्रश्न हमारे मन में उठा उन्होंने प्रश्न उठाया कि शिवजी दक्ष प्रजापति के शिष्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों शिवजी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान ही शिवजी में है। दोनों ज्ञान की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। तब दक्ष प्रजापति ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा शिष्य है। तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अनेक आचार्य लिखते हैं कि संसार में जब किसी का विवाह होता है तो पत्नी का जो बाप होता है अर्थात ससुर जो होते हैं वे दामाद के गुरु माने जाते हैं। दामाद को अपने ससुर को गुरु समझना चाहिए। ससुर का स्थान वेदों में, शास्त्र में और भागवत में गुरु की जगह पर होता है, सदैव उसे गुरु समझिए। और आज के दामाद तो नौकर बनाकर रखते हैं अपने ससुर को, ये ठीक नहीं है। बहुत सुंदर सिद्धांत भागवत में, यह कथा बहुत विस्तार से है। बोले ये मेरा शिष्य है लेकिन फिर भी मैं आया तो खड़ा होना नहीं जानता है, भूतों के साथ रहता है, प्रेतों के साथ रहता है, न तो अच्छे व्यक्ति का संग करता है, और मैं दक्ष प्रजापति मेरे जैसे राजा की कन्या का विवाह इसके साथ कराया लेकिन आज तक एक अपने रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं बनाया। दक्ष प्रजापति ने बहुत शिव जी के विषय में कहा, तो लोगों ने पूछा यदि आप शिव जी के विषय में इतना कुछ जानते हो तो अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ क्यों कराया। बोले मैं तो चाहता ही नहीं था, ये बैठे हैं बूढ़े दाढ़ी वाले मेरे बाप, इन्होंने विवाह करवाया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, और जब विवाह हुआ तब मैंने सोचा कि शादी के बाद सुधर जाएगा, परंतु ये तो दिन भर दिन बिगड़ते जा रहा है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने बहुत क्रोधित हो गए और शिव जी को श्राप दे दिया। हाथ में जल लेकर दक्ष प्रजापति ने संकल्प किया, आज के बाद समस्त देवता कान खोलकर सुन लो, पृथ्वी पर हजारों यज्ञ हो परंतु यज्ञ का भाग आज से शिव जी को नहीं दिया जाएगा। इतना कह के दक्ष प्रजापति चले गए और शिव जी तो शांत विग्रह हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमा। हृदय में करुणा है, शांत विग्रह है, शिव जी तो शांत बैठे रहे परंतु शिव जी के शिष्य से नहीं रहा गया। नंदी को जैसे ही पता चला कि हमारे गुरु को दक्ष प्रजापति ने इतना अपमान किया, तुरंत नंदी खड़ा हो गया, बोले दक्ष प्रजापति मूर्ख हो जाए, आत्मज्ञान से विहीन हो जाए, और दक्ष प्रजापति के जितने भी अनुचर हैं वे सब वेदों के विपरीत चले, वे सब लोग दर दर भटक कर भीख मांगे, दक्ष प्रजापति के जितने भी अनुचर ब्राह्मण ये सब लोग अपना पेट भरण पोषण करने के लिए ही अपनी जीवन वेहिका चलाए। नंदी ने श्राप दिया, वहां से भिगु ऋषि ने श्राप दिया, बोले तुम हमें श्राप दे रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए, सब तमोगुणी हो जाए, एक दूसरे को अनेकों बार श्राप देने लगे। शिव जी ने सोचा कि अब एक घड़ी भी यहां पर बैठूंगा तो ये श्राप को छोड़कर आयुध हाथ में ले लेंगे। तुरंत शिव जी वहां से खड़े होकर अपने अनुयायु को लेकर निकल गए और अपने घर पर गए। शिव जी ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, ध्यान रखिए, सती को यह कुछ नहीं पता था, ये आज के पति जैसे थोड़ी ना है, कुछ भी करते हैं तो जाकर बता देते हैं, ऐसे नहीं थे। और शिव जी वास्तव में परम वैष्णव है, शिव जी जानते हैं कि चलो दक्ष प्रजापति ने जो भी किया, मेरी पत्नी की दृष्टि मेरे ससुर के प्रति अच्छी है तो अच्छी रहने दीजिए। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत गलत बातें करके दूसरों के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, दूसरों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, दूसरे को बुरा साबित करना चाहते हैं, संसार में ऐसे होते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। कम से कम किसी का अच्छा ना कर सको कोई बात नहीं, परंतु दो भक्त हैं, एक भक्त की दूसरे भक्त के प्रति निष्ठा है, रुचि प्रेम है, और दोनों भक्तों को आपस में प्रेम है, तो बीच में जाकर उस भक्त को इस भक्त के प्रति क्यों बहकाना, क्यों भड़काना। शिव जी ने यह बहुत बुरा समझा, इसलिए अपनी पत्नी को नहीं बताया। परंतु यहां दक्ष प्रजापति शिव जी के प्रति जो वैर था, जो ईर्ष्या थी, वह दिन भर दिन बढ़ते गई, और उन्होंने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ का अनुष्ठान किया, बहुत बड़ा यज्ञ, और यह यज्ञ स्पेशल शिव जी का अपमान करने के लिए। भक्तों, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो यज्ञ है वो दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, परंतु यज्ञ कभी भी ईर्ष्या के भाव में नहीं होना चाहिए। किसी की देखा देखी में नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा यज्ञ किया मैं उससे बड़ा यज्ञ करूंगा। यज्ञ में कभी भी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वह द्रव्य यज्ञ हो या चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो। कुछ लोग भागवत में भी कंपटीशन करते हैं, उन्होंने ऐसी कथा की हम और बड़ी करेंगे, हम उससे बड़ी करेंगे। इस भावना से जब कोई कथा करता है तब कथा करने वाला, कथा कराने वाला या कथा सुनने वाले किसी का भला नहीं होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। चाहे यज्ञ हो, भागवत कथा यज्ञ हो, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करने का होना चाहिए, हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। इस इरादे से, इस लक्ष्य को लेकर जब हम यज्ञ करते हैं तब सफल होते हैं। दक्ष प्रजापति का इरादा गलत था, इसलिए इस यज्ञ का जो रिजल्ट था बहुत बेकार हुआ। बृहस्पति सव नाम का यज्ञ और सबको कुमकुम पत्री लिखी, सभी 33 करोड़ देवताओं को भेजा घर पर, और बहुत सुंदर लिखा था, बृहस्पति सव नाम का यज्ञ का अनुष्ठान किया है, आप सबको सह परिवार विथ फैमिली, सह परिवार आना है, नए नए कपड़े वस्त्र और गाड़ी को साथ में लेकर आना, पार्किंग का पास भी दिया होगा, और नीचे सूचना करके लिखा था नोट, बोले आप सबको आना है, सब परिवार आना है, परंतु एक निवेदन है दक्ष प्रजापति की ओर से कि यदि रास्ता लंबा पड़े तो थोड़ा कष्ट सह लीजिए, परंतु कैलाश से ऊपर होकर आना, ताकि उसको पता चले सबको बुलाया है, उस शिव को ही नहीं बुलाया। भले रास्ता लंबा हो परंतु कैलाश के ऊपर होकर आना। और समस्त देवता किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा। गोस्वामी जी कहते हैं देवता गंधर्व किन्नर नाग सिद्ध सब लोग अपने बंधु, अपने पति पत्नी साथ में अपने विमानों को सजाकर नए नए वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, और पार्वती देख रही है, सती देख रही है कि इतनी फ्लाइट आज क्यों जा रही है, आज यहां सज धज कर ये लोग कहां जा रहे हैं। तब देवी सती ने एक देवताओं को खड़ा रखा कि प्रभु जरा नीचे उतारिए अपने विमान को, थोड़ा लैंड कीजिए। तो ऊपर से पूछा क्या है, बोले कहां जा रहे हो आप सब लोग एक साथ, किसी की शादी है? बोले आपको नहीं पता, आपके पिताजी बृहस्पति सव नाम का यज्ञ कर रहे हैं और उसमें हम सबको सह परिवार बुलाया है। बोले अच्छा, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे ही नहीं बताया? बोले कोई बात नहीं, बहुत लोगों को बुलाना होगा इसलिए हमें बुलाना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आप जाओ हम आ रहे हैं। शिव जी भगवान के ध्यान में बैठे थे, सती गई, कहा प्रभु आप को पता नहीं हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? शिव जी ने कहा पता है, तो प्रभु आपको नहीं लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए? बोले नहीं जाना चाहिए, शिव जी ने अब तक नहीं बताया था। सती ने कहा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमारे घर पर अवसर आया है और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा? बोले देखो प्रिय, जब तक किसी का आमंत्रण न हो, निमंत्रण न हो, तब तक वहां पर नहीं जाना चाहिए। तब सती ने बहुत सुंदर सिद्धांत कहा कि प्रभु चार लोगों के घर पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। किसके घर पर? मित्र, मित्र भगवान पिता और गुरु, मित्र भगवान पिता और गुरु। अपने मित्र के घर पर या भगवान के मंदिर से कभी आपको निमंत्रण नहीं आएगा कि हमारे वहां बहुत सुंदर उत्सव है इसलिए राम मंदिर में आइएगा, वहां तो बिना बुलाए जाना होता है। मित्र के वहां बिना बुलाए जा सकते हैं, पिता के घर पर बिना बुलाए जा सकते हैं, और गुरु के पास बिना बुलाए जा सकते हैं। इसमें राह नहीं देखनी चाहिए, भगवान की कथा सुनने के लिए राह नहीं देखनी चाहिए कि हमारे पास कार्ड नहीं आया, हमको तो एक बार भी नहीं बुलाया। हमारा सौभाग्य लेने के लिए हमें यह जगह पर जाना चाहिए। प्रभु चार जन के वहां बिना बुलाए, ये नीति है। तब शिव जी ने बहुत सुंदर बात बताई, देवी प्रिय तुम बात तो सही कर रही हो कि ये चार लोगों के पास बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु यदि ये चार प्रकार के लोग हमें बुलाना भूल गए हो तब बिना बुलाए जा सकते हैं, जानबूझकर यदि नहीं बुलाया हो तब जाकर तो हमारा अनिष्ट ही होगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाय बिनु बोले हुन संदेहा, तद्यपि विरोध मा न जह कोई तहा गए कल ज्ञानु न हो, कल्याण नहीं होगा। शिव जी ने बहुत समझाया, शिव जी ने कहा हमारे जाने पर यदि किसी को हर्ष नहीं होता है, किसी की आंखों में स्नेह नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के वहां कुछ भी दे दे फिर भी नहीं जाए। हमारे संतों ने बहुत सुंदर कहा, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। किसी के घर पर जाते हैं और मुंह बिगाड़ देते हैं, मुंह फेर लेते हैं और आंखों से स्नेह उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे लोगों के घर पर जाने से। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां नहीं जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यदि कंचन की सोने की बारिश भी हो जाए लेकिन फिर भी उनके घर पर नहीं जाना चाहिए जिनके घर पर जाने से मुंह बिगड़ जाता हो, घर वालों का आंख में स्नेह नहीं उत्पन्न होता हो, उनके घर पर जाने से क्या लाभ है, उनके घर पर नहीं जाते। शिव जी ने बहुत मनाया, जब सती नहीं मान रही थी तब मजबूर होकर शिव जी को कहना पड़ा कि प्रिय आपके पिता ने मुझको बहुत भला बुरा कहा है और मेरे प्रति उनका दुर्भाव उत्पन्न हो गया है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। इतना कहे कि शिव जी समाधि में स्थित हो गए और पार्वती क्षमा कीजिए देवी बैठी बैठी सोच रही है सती क्या करूं क्या करूं। सती ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अपना बोरिया बिस्तर तैयार किया और लेकर चलने लगी, दरवाजे के पास गई वापस आई। मैं जाऊं? शिव जी बैठे हैं न तो हां कह रहे हैं न ना कह रहे हैं। फिर से दरवाजे के पास जाती हैं और सोचती हैं कि पति को पूछे बिना कैसे जाऊं, ये आज की स्त्री जैसी नहीं थी, बिना पूछे सोचे समझे चली जाए, मैं चली जाऊंगी जहर पी लूंगी आत्महत्या। सती है पतिव्रता नारी है, बार बार वापस आ रही है और शिव जी ने देखा कि यदि मैंने इसको रोक दिया तो ये बिचारी अपना प्राण यहां त्याग देगी। सती ने कह भी दिया, मन में सोच भी लिया कि पिता के घर पर इतना बड़ा अवसर है, मेरी मौसी आई होगी, मेरे चाचा आए होंगे, दादा आए होंगे, मेरी बहन, मेरी 15 बहनें आई होंगी, ये सब का दर्शन मिलेगा और ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, यदि नहीं जाने दिया तो मैं मर जाऊंगी। शिव जी ने सोचा कि यहां मर गई तो वो साला केस कर देगा मेरे ऊपर और कोर्ट के चक्कर बढ़ जाएंगे, और शिव जी को यह भी पता था कि वहां जाएगी तब भी ये मरने वाली है, दक्ष के यज्ञ में यहां भी मरना है वहां भी मरना है, चलो अपने बाप के पास ही मरे, कम से कम कलंक से तो बचेंगे। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। देवी सती चलने लगी, फिर शिव जी ने सोचा तुरंत नंदी को बुलाया, जाओ जाओ नहीं तो फिर उनका बाप कहेगा कि मोटरसाइकिल भी नहीं भेजा, हमारी बेटी को मायके आने के लिए गाड़ी भी नहीं भेजा, जाओ जरा बिठा कर उसे ठीक से छोड़ के आओ। शिव जी ने नंदी को भेजा, सती गई और सब लोग आए थे। सती ने देखा कि हमारे पति देव को ही नहीं बुलाया। सती अंत में अपनी मां के पास जाकर कहती है कि माताजी आप सच सच बताओ यहां पर क्या हुआ था। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने शिव जी का अपमान किया था, अपराध किया था। और सती ने जब सारी बात सुनी, शिव जी का अपराध, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे इस संसार में अनेकों नदियां हैं परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, इस संसार में अनेक देवता है परंतु सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, देवानाम अच्युतो यथा, इस संसार में अनेक पुराणों की संख्या है 18 पुराण, परंतु सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, जैसे अनेक नदियां हैं सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, वैसे ही संसार में अनेक वैष्णव है परंतु सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ शिव जी है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। बोले ऐसे महान वैष्णव भक्त शिव जी की निंदा की, सती से नहीं रहा गया। और उस सभा में हजारों लोग, कल का इतिहास हरिद्वार के करीब कनखल क्षेत्र, और उस यज्ञ हवन में हजारों लोग बैठे हैं और बीच में सती खड़ी रह गई। और सती ने जो उपदेश दिया है अद्भुत उपदेश है, सुनहु सभा पद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर ही निंदा,
असद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा।
सती सभा में खड़ी है, हजारों लोग सभा में खड़े हैं और सभी सभासदों के बीच में खड़ी होकर सती ललकारते हुए कहती है,
सुनहु सभा पद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर ही निंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर ही निंदा,
सो फलु तुरत लहब सब काहू, भांति भांति पछताव पिताहू,
सो फल तुरत लहब सब काहू, भांति भांति पछताव पिताहू।
शिव जी का जो भी अपमान करता है, शिव जी का जो अपराध करता है, उसे तुरंत फल मिलता है, फल मिलने में देरी नहीं होती है। वैष्णव का अपराध इस जगत में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। यदि कोई 1 करोड़ पाप करे और 1 बार वैष्णव का अपराध कर दे, उस करोड़ पाप से भी ज्यादा दुरूह 1 वैष्णव का अपराध है। भक्तों हमारा इतिहास साक्षी है, राजा रघुगण सौराष्ट्र के सौवीर देश के राजा थे, गंगा सागर जा रहे थे, बीच में जड़ भरत को पालकी उठाने के लिए ग्रहण किया और जड़ भरत जब उस पालकी को ठीक से नहीं उठा रहे थे, राजा रघुगण नीचे हाथ में हंटर चाबुक लेकर जब उसे मारने लगे, जड़ भरत ने उपदेश दिया। उस समय इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट ने कहा था कि हे महात्मा, इस जड़ के वेश में आप कौन हो? राजा रघुगण ने उस समय कहा था, नाहम विशंके सुरराज वज्रात, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात, मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूँ, मैं सूर्य के ताप से नहीं डरता हूँ, न अग्नि सोम अर्क, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इस संसार में यदि मैं डरता हूँ तो किसी वैष्णव के अपराध से डरता हूँ, क्योंकि सब कुछ देकर भी इस संसार में प्राप्त हो सकता है परंतु वैष्णव अपराध को कभी कोई धो नहीं सकता है। वज्र लेखो भविष्यति, वैष्णव अपराध बहुत दुरूह है और उसमें भी शिव जी का अपराध। भगवान राम ने राम सेतु, उस समुद्र के ऊपर सेतु बनाने के बाद हुंकार करते हुए कहा था, शिव द्रोही मम भगत कहावा, यदि कोई मुझे भगवान मानता है, मेरी भक्ति करता है परंतु शिव जी से द्रोह करता है, वह नरक में जाता है, सो नरक नारक की गति पावा। और इसी बात को देवी हजारों लोगों के बीच में कह रही है, कि आपने शिव जी का अपराध किया। इस सभा में जिन जिन लोगों ने शिव जी का अपराध किया है उसे आज और अभी फल मिल जाएगा।
सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू।
सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू।
आप सब लोग याद रखना, आप सब लोग एक ना एक दिन पछताओगे। और ये मेरा बाप दक्ष भी, ये मेरे पिता भी एक ना एक दिन पछताएंगे, क्योंकि उन्हें शिवजी का अपराध किया है। अरे तुम शिवजी की महिमा को क्या जानो, दोषान परेशान ही गुणेश साधवो गणंति केचिन भवान दृशोद्विज। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के गुण में भी दोष देखते हैं। कितना भी अच्छा गुण हो, कितना भी अच्छा आयोजन हो, परंतु गुण में दोष को देखते हैं, उसे खल पापी कहा जाता है। आप सब लोग शिव जी के गुण में दोष देखने वाले हो। और इस संसार में कुछ लोग दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं, और दूसरों के दोष में जो गुण देखते हैं ना, उसे महात्मा कहते हैं। शिव जी जैसे महात्मा इस संसार में और कोई नहीं है, जो भूत प्रेतों को अपने साथ में रखते हैं, उनके दोषों को न देखते हुए उनको गुण प्रदान करते हैं। आपने क्या कहा था, मेरे पति भूत प्रेत के साथ रहते हैं, कि आप लोग जानते हो भूत प्रेत के साथ क्यों रहते हैं? इस संसार में प्रचार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अमेरिका में प्रचार करते हैं, लंदन में, यूरोप में, विदेश में। कुछ लोग भारत में प्रचार करते हैं, मनुष्य को प्रचार करते हैं। अरे शिवजी जैसे करुणामय कौन हो सकता है? शिवजी भूत और प्रेतों को प्रचार करते हैं। आप जानते हो शिवजी भूत और प्रेत को क्यों साथ में रखते हैं? शिवजी मन में सोचते हैं कि एक ना एक दिन ये लोग मेरे साथ में रहकर सुधर जाएंगे, एक ना एक दिन ये सभी भूत प्रेत को मैं मेरे जैसा साधु बना दूंगा, भक्त बना दूंगा। इतने बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े भूत प्रेतों के साथ शिवजी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी करुणा है। अरे तुम क्या जानो शिवजी की क्या महिमा है? शिवजी की महिमा तो भगवान जानते हैं। देवी पार्वती ने बहुत सुंदर उपदेश सबके बीच में दिया। और मनुष्य जन्म प्राप्त करके शिवजी का जो द्रोह करता है वह मनुष्य मनुष्य नहीं, वह मुर्दे के समान है, वह शव के समान है। जिनका दो अक्षर का शिव नाम है, और उस शिव को एक बार भी कोई अशिव अमंगल कर कह देता है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। अरे हजारों हजारों लोग शिव जी की शरणों में आते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त करके मंगल को प्राप्त होते हैं, ऐसे शिव जी का अपराध किया? इस संसार में तीन लोगों का अपराध यदि कोई करता है, तीन लोगों का अपराध यदि कोई करता है तो वह तुरंत नष्ट हो जाता है। देवी सती ने बहुत सुंदर उपदेश देते हुए कहा, सभासदों को कहा कि अपराध दक्ष प्रजापति ने किया है। दक्ष प्रजापति बोल रहे थे, हमारे पिता बोल रहे थे, लेकिन आप लोगों ने क्यों सुना?
संत समूषिपति अपबादा, सुनिए जहां तह असी मर जादा।
जिस सभा में संतों की, साधु की, वैष्णवों का अपराध होता हो, जिस सभा में भगवान विष्णु का अपराध हो रहा हो, जिस सभा में शिवजी का अपराध हो रहा हो, और जो अपराध करने वाला है यदि बस में हो तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और यदि ऐसा न कर सको तो तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए।
काटियतासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई।
काटियतासु जीव जो बसाई,
उनकी जीव काट देनी चाहिए।
मुदिनत चलिय पराई।
तजी हूं तुर देह ते हे तू उरधरि चंद्र मौलि वृष के तू
तजियाउ तुरत देहि ते हे तू उरधरि चंद्र मौलि वृष के तू।
सती ने उपदेश दिया और सती ने अंत में जो चीज कही है, मैं सती हूँ, शिव जी की पत्नी हूँ और आज मैंने इन कानों से मेरे पति का अपराध सुना है। इस संसार में जो नारी अपने कानों से अपने पति का अपराध सुन लेती है उसे इस जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज इस शरीर में मैंने मेरे पति का अपराध सुना है और आज मैं दक्ष प्रजापति जिन्होंने शिव जी का अपराध किया, जिनके वीर्य से मेरा जन्म हुआ है, आज मैं लज्जा को प्राप्त हो रही हूँ। मेरे शरीर को धिक्कार है कि ऐसे बाप की मैं पुत्री हूँ जिन्होंने शिवजी का अपराध किया। आज ये शरीर इस संसार में रहने के योग्य नहीं है। इतना कहते ही सती ने सोच लिया, अब मैं इस जीवन में रहूंगी नहीं क्योंकि शिवजी का अपराध हुआ है। उस समय सती ध्यान में बैठ गई, ध्यान में बैठकर शिवजी का स्मरण किया और उसी समय सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में शिवजी सती जलकर भस्म हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं,
अस कहीं जोग यकनि तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा।
अस कहीं जोग यकनि तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा।
सती ने यज्ञ में प्रवेश कर लिया, अपने शरीर को जला दिया और पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तीनों लोक में यह खबर पहुंच गई।